आप सुनना शुरू कर चुके हैं देश विदेश की खबरों से भरा न्यूज 18 हिंदी का पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। स्वीकार करें अनुराग अन्वेषी का नमस्कार। दोस्तों, संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी और कल आम बजट। भोपाल में भाजपा नेत्री निर्मला देवी शांडिल्य की गौशाला में कई गायों की मौत के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इन खबरों के अलावा आज के पॉडकास्ट में होंगी कानपुर बस दुर्घटना, बिहार एनडीए में चल रही टसल और कोरोना संक्रमण से जुड़ी खबरें। उत्तर कोरिया में हो रही मिसाइल परीक्षणों की भी खबर होगी आज के पॉडकास्ट में। साथ ही बताएंगे देश भर के मौसम का हाल। फिलहाल आज की पहली खबर। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। विपक्ष ने पेगासस जासूसी मामले, पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। बजट सत्र के पहले दिन यानी आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश होगा। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और विपक्षी दल की ओर से इसमें जो भी मुद्दे रखे जाएंगे उस पर सरकार विचार करेगी। बता दें कि संसद के बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी चलेगा। इसके बाद विभिन्न विभागों के बजटीय आवंटन पर विचार के लिए अवकाश रहेगा। बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से शुरू होगा जो 8 अप्रैल तक चलेगा। कोविड महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें दिन में अलग अलग समय पर आयोजित होंगी ताकि कोविड के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। बजट सत्र के पहले दो दिन शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं होंगे। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा बुधवार से शुरू होगी। ऐसी संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को चर्चा का जवाब देंगे। लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 4 दिन रखे गए हैं जो 2 फरवरी से शुरू होगी। भोपाल के बैरसिया के गौशाला में कई गायों की मौत की खबर सामने आई है। लगभग 18 बरस से इस गौशाला का संचालन भाजपा नेत्री निर्मला देवी शांडिल्य कर रही हैं। रविवार को गौशाला के कुएं से 20 गायों के शव मिले। 75 से ज्यादा गायों के एक शव और कंकाल मैदान में बिखरे मिले। शनिवार को भी इसी गौशाला की 8 गायों की मौत हुई थी। गायों की मौत की जानकारी जैसे जैसे लोगों को लगती गई वे मौके पर जुटते गए। देखते देखते वहां भीड़ लग गई। लोग गायों की ये हालत देखकर भड़क गए। इसके बाद उन्होंने निर्मला देवी शांडिल्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया। प्रशासन ने आनन फानन में गौशाला का संचालन अपने हाथ में ले लिया है। लोगों के विरोध और फैलते तनाव को देखकर बैरसिया में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कानपुर में रविवार रात 11 बजे के आसपास टाटमिल चौराहे के पास रॉन्ग साइड चल रही तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक बस ने 17 वाहनों में टक्कर मारी। इस हादसे में कम से कम 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई है जबकि 12 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में से 7 को टाटा मिल स्थित कृष्णा अस्पताल और 4 को हैलट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इनमें से कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक बस घंटाघर चौराहे से टाटमिल की ओर जा रही थी। वहां पर पुल से उतरते ही चालक ने बस को उल्टी दिशा में दौड़ाना शुरू कर दिया और जो भी बीच रास्ते में मिला उसको रौंदते हुए निकल गया। लोगों को रौंदने के बाद भागने की कोशिश में ये बस टाटमिल चौराहे के पास डंपर से टकरा गई। ई बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। बिहार विधान परिषद चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में चल रही टसल लगातार सामने आ रही है। 24 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए भाजपा और जदयू में समझौता तो हो गया है लेकिन जीतन राम मांझी की हम पार्टी और मुकेश सहनी की वीआईपी को डिमांड के बावजूद एक भी सीट नहीं मिल पाई। इस पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। रविवार को पटना में मुकेश सहनी ने ऐलान किया कि अगर उन्हें विधान परिषद में सीटें एनडीए की तरफ से नहीं दी गई तो वे 24 सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों को खड़ा करेंगे। जरूरत पड़ी तो वो मोदी और योगी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाएंगे। ये खबरें आप न्यूज 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। कोरोना महामारी का कारण बनने वाला SARS-CoV-2 200 दिनों से अधिक समय तक भी किसी को संक्रमित कर सकता है। फ्रंटियर्स इन मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित एक हालिया रिसर्च में यह बात बताई गई है। स्टडी के पहले लेखक मारियल्टन डॉस पासोह कुन्हा ने कहा, हमने जिन 38 मामलों को ट्रैक किया उनमें दो पुरुष और एक महिला इस अर्थ में असामान्य थे कि उनके शरीर में 70 दिनों से अधिक समय तक लगातार वायरस का पता चला था। इस परिणाम के आधार पर हम कह सकते हैं कि लगभग 8% लोग SARS-CoV-2 से संक्रमित हैं और वे संक्रमण के अंतिम चरण के दौरान किसी भी लक्षण को प्रकट किए बिना 2 महीने से अधिक समय तक वायरस को फैलाने में सक्षम हो सकते हैं। पाश्चर यूएसपी साइंटिफिक प्लेटफॉर्म के कोऑर्डिनेटर्स में से एक पावोला मिनोप्रियो ने कहा, हम जानना चाहते थे कि क्या 14 दिनों की क्वारंटाइन अवधि वास्तव में वायरस को रोकने के लिए काफ़ी है। हमने निष्कर्ष निकाला कि यह समय पर्याप्त नहीं है। हमारे अध्ययन सहित कुछ मामलों में मरीज 71 से 232 दिनों तक कोरोना पॉजिटिव रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 209,918 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही कोविड-19 से 959 लोगों की मौत हुई है। वहीं देश भर में 24 घंटे में 262,628 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमित 26 और लोगों की मौत हो गई और 8,100 नए मरीज मिले। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 22,444 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 50 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। रविवार को बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के मध्य प्रदेश में 9,305, राजस्थान में 10,061, कर्नाटक में 28,264 और केरल में 51,570 नए मामले सामने आए हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन लगातार मिसाइल परीक्षणों से दुनिया को चौंका रहे हैं। कोरिया ने रविवार को फिर से अज्ञात हथियार का प्रक्षेपण किया है। दक्षिण कोरिया की सेना ने इसकी पुष्टि की है। उत्तर कोरिया ने एक महीने में 7वीं बार हथियारों का परीक्षण कर अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा पहुंचाया है। उसके इस कदम से जापान और दक्षिण कोरिया सहमे हुए हैं। आखिरी बार उत्तर कोरिया ने एक महीने में इतने सारे हथियारों का परीक्षण साल 2019 में किया था। और अब देश भर के मौसम का हाल। मौसम विभाग ने कहा है कि फरवरी के पहले सप्ताह में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक एक और पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के रास्ते आया है, जिससे देश के अधिकांश भागों में बारिश की संभावना बन रही है। 2 फरवरी के बाद झारखंड समेत बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अगले 2 दिनों तक सतह पर 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। 3 जनवरी से उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेताया है कि अभी 1 हफ्ते तक पर्वतीय जिलों में जबरदस्त ठंड रहेगी और फरवरी के पहले सप्ताह में बारिश बर्फबारी की भी संभावना रहेगी। उत्तराखंड के कई इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की आशंका जताई गई है। ये खबरें आप News18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे थे। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। आज के पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही। नई खबरों और नए अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दें अनुराग अन्वेषी को विदा। नमस्कार दोस्तों।